اس فلم کی کہانی ایک اہم تاریخی واقعے سے ماخوذ ہے۔ بعض جگہوں پر افراد اور مقامات کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔
خدا شاہ وطن، فوجی عدالت کے فرمان اور حکم کے مطابق آن ڈیوٹی کرنل فرامرز تکین کو ملک اور شاہ سے غداری کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس حکم پر مسلح افواج کے نمائندے کے سامنے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اسکواڈ میرے حکم پر تیار رہے، گھٹنوں پر، ٹارگٹ سامنے۔
کیپٹن ابوالحسن عباسی کے بھیانک اعترافات کے بعد آج صبح فوجی افسروں کی خفیہ تنظیم کے 27 اراکین کو وطن اور شاہ سے غداری کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ سوویت یونین سے وابستہ دسیوں فوجی افسران کو جاسوسی اور بدعنوانی کے جرم میں عمر قید اور قید بامشقت کی سزائیں سنائی گئیں۔ فوج میں اس وسیع تطہیری عمل کے ساتھ ہی کل رات جنرل زاہدی اور امریکہ سے آئے ہوئے کچھ مندوبین کی شراکت سے ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ کے ایک منصوبے کے تحت ایرانی فوج کو تدریجی طور پر ناپسندیدہ عناصر سے پاک کیا جائے گا۔ اس اہم میٹنگ میں امریکی حکومت نے 1961 تک ایران کو 600 ملین ڈالر کی اقتصادی اور فوجی امداد دینے کی منظوری دی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو دو عالمی جنگوں کے دوران ایران کے ساتھ وسیع پیمانے پر تعلقات قائم کرنے کے درپے تھا،
ہیلو،
کرنل تکین؟
ہاں میں ہوں،
میں وزیر اعظم کے آفس سے فون کر رہا ہوں.
ہاں،
ایک اہم موضوع ہے کہ جنرل زاہدی ذاتی طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں.
کب؟
ابھی اسی وقت.
ضرور، میں تیار ہوں.
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، دوسری عالمی جنگ کے بعد تین ممالک، امریکہ، برطانیہ اور روس کے سربراہان مذاکرات کے لیے تہران آئے تھے. اس نشست میں طے پایا تھا کہ تینوں ممالک ایران میں ریلوے اور نقل و حمل کی سہولیات حاصل کیے جانے، اسی طرح قبضے کے دوران غلات اور راشن کے استعمال کے سلسلے میں ہمیں کچھ تاوان کی ادائیگی کریں گے. اس کانفرنس میں سوویت یونین نے ذمہ داری لی تھی کہ وہ 60% واجب الادا حصے کو 11 ٹن، 196 کلو اور 703 گرام سونے کی شکل میں، اور باقی 40% کو امریکی ڈالروں کی صورت میں ادا کرے گا. لیکن اب تک کسی بھی ملک نے ہمیں کسی قسم کا تاوان ادا نہیں کیا ہے. اگر ادا کرنا بھی چاہتے تھے تو شہزادی اشرف پہلوی ایسا کرنے نہیں دیتی، کیونکہ ان کی وزیر اعظم مصدق سے ٹھنی ہوئی تھی.
اور جناب عالی نے بندے کو بلایا ہے کہ حکومت کے نمائندے کے طور پر اس سونے کی واپسی کے لیے سوویت یونین چلا جاؤں. میں نے صحیح اندازہ لگایا سر؟
تمہیں پتا ہے کرنل، تم میں ایک خامی ہے اور ایک خوبی. خوبی یہ ہے کہ تم ذہین ہو. وہ بات جو دوسرے لوگ ایک سال کے عرصے میں بھی سمجھ نہیں سکتے، تم ایک منٹ کے اندر بھانپ لیتے ہو. تمہاری خامی بھی یہی ہے کہ تم ہوشیار ہو، لیکن دولتیاں مارنا تمہاری خصلت ہے، چاہے تم چاہو یا نہ. میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کرنل، تم مجھ پر دولتی چلانے کی کوشش مت کرنا. یہ تمہارے مشن کا حکم ہے، تمہیں موسکو جانا ہوگا حکومت کے مکمل اختیار یافتہ ایلچی کے طور پر. تم سونے کی اینٹوں کی اچھی طرح سے اور مکمل طور پر تحویل میں لوگے اور اینان پلٹ کر آؤ گے. اس مشن میں کچھ لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے، شاہی دربار کا نمائندہ بھی ہے، لیکن سربراہ تم ہو. یہ لو.
شکریہ حضور. اس مشن کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟
اس لیے کہ تم ذہین اور چالاک ہو، ہوشیار ہو، وطن پرست ہو، کسی سے اور کسی جگہ سے بھی وابستہ نہیں ہو. اور ان سب باتوں سے بڑھ کر مجھے صرف تم پر اعتماد ہے کرنل، تم جا سکتے ہو. کرنل، 11 ٹن خالص سونا بہت سے لوگوں کو ورگلا سکتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ تم حتیٰ کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سونے سے نظریں نہ ہٹاؤ.
جی سر.
دوسری عالمی جنگ کا تاوان ایران کو ادا کر دیا جائے گا. یورپی اور امریکی کمپنیوں کے نمائندے ایران پہنچ گئے. اخبار، آج کی تازہ خبر. اخبار، دوسری عالمی جنگ کا تاوان ایران کو ادا کر دیا جائے گا. تازہ خبریں پڑھیں آج کے اخبار میں، گرما گرم خبریں ہیں. اخبار، آج کی تازہ خبر. ایران کو تاوان میں سونا دینے کا فیصلہ.
کرنل صاحب، آج کا تازہ اخبار، اس میں اہم خبریں ہیں. عالمی جنگ کا تاوان ایران کو سونا دینے کا فیصلہ، آج کی تازہ خبریں.
گڈ لک کرنل صاحب، بہتر ہے جانے سے پہلے میری باتیں بھی سن لیں. ہوشیار. یہ صفحہ.
ہوشیار صاحب، ہوشیار صاحب، تشریف لے آئیں.
تمہارے اس اقدام سے میرا تو کورٹ مارشل ہو گئی، تم بھی پھنسو گے.
تم فوجی ہو، تمہارا سر بچا رہے گا، لیکن میں سختی سے اپنی بات پر اڑا ہوا ہوں. میں سیاسی آدمی ہوں.
میں سیاسی آدمی ہوں. تمہارے پاس عوام کو بیوقوف بنانے کے علاوہ اور تھا ہی کیا؟ تم نے مصدق کا ساتھ دیا، نہ ہی فاطمی کی حمایت کی. سیاسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کا ساتھ نہ دیں. ہاں،
ابھی بہت وقت پڑا ہے کہ تم متوجہ ہو سکو. تمہارے خیال میں سیاسی لوگ وہ نام ہے جو تم لے رہے ہو؟
احمد صاحب، میں ان باتوں کو تم سے زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہوں، لیکن اجازت دو کام کی ابتدا میں اپنے وعدے وعید کر لیں۔ میں ایک فوجی ہوں اور کسی بھی سیاسی پارٹی یا گروہ سے وابستہ نہیں ہوں، واضح؟
اگر ہماری دوستی کی وجہ سے نہ ہوتا، اگر ہمارے تعلقات نہ ہوتے، اگر تمہارے والد نہ ہوتے، تو میں ایک فوجی کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ نہ کرتا اور اس سے ہرگز اپنے افسر کی نافرمانی کرنے کو نہ کہتا۔
ایک منٹ رکو، ابھی تم نے کیا کہا؟ اپنے سینئرز کی حکم دلی کا مطلب سمجھتے ہو؟
فوج میں اب بھی بدلے لیے جا رہے ہیں، صرف اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے۔ اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ، تم نے خون بہایا اور اس کے بدلے تمہاری رینک بڑھا دی گئی ہے، لیکن اس کام اور دوسرے کاموں میں فرق ہے، وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔
اب جب میں سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تم سچ کہتے ہو۔ اگر ہمارے ملک کا کوئی ڈھنگ کا نگراں ہوتا تو فوجی راز تم جیسے لوگوں کے پاس ہرگز نہیں پہنچنے چاہیے تھے۔
دیکھو، جنگ دو جانبہ ہے، ان کے ہمارے یہاں سپاہی اور ہمارے بھی ان کے درمیان، لیکن تم دھیان رکھنا، میرے دوست زرہ کے بغیر میدان میں مت کودو۔
ان بیہودہ باتوں کو سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو، تمہاری آخری بات کیا ہے؟
تم سن سکو گے؟
یہ تو بات مجھ سے ہی متعلق ہے۔
اس مشن پر مت جاؤ۔
کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں ایک فوجی ہوں، مجھے اپنے افسر کے حکم کا احترام کرنا چاہیے اور اس پر اعتماد کرنا پڑے گا۔
ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن میرے ساتھ رابطے میں رہو تاکہ تمہاری مدد کر سکوں۔
تمہارے ساتھ رابطے میں رہوں؟ دیکھو، ان حالات میں اب میں یقین کے ساتھ تم سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نے اس معمولی خاندانی رشتے کو بھی برباد کر دیا ہے جو ہمارے درمیان تھا۔ آج کے بعد تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔
مجھے افسوس ہے کہ میرا دوست ایک وسیلہ بن گیا ہے عوام کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے۔
مجھے بھی تم پر افسوس ہے کہ تم سوچتے ہو ان کھوکھلے سیاسی نعروں کے ذریعے اس قوم کے حقوق کی بازیابی کرا سکتے ہو۔ سڑکوں پر ایک نظر ڈالو اور لوگوں کی صورتحال کو دیکھو۔ نہیں نہیں، چھوڑو، مشکل ہے، یہیں پر بیٹھو اور نعرے لگاؤ۔
فرامرز، کسی پر بھی اعتماد مت کرو، آہ سنتا ہی نہیں۔
امی جا قبول ہو،
خدا قبول کرے بیٹا۔
آپ مسافروں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں
کیا؟ کیا پھر سفر پہ جا رہے ہو؟ تم تو ابھی ڈیوٹی کر کے واپس آئے ہو۔
تفصیلی داستان ہے یہ، لیکن اس مرتبہ بہت خصوصی مشن ہے،
بہت خصوصی۔
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔
اس کے علاوہ کیا میں کچھ اور کر سکتی ہوں؟
خدا کرے میں آپ پر قربان جاؤں۔ میں مشن سے واپس آ کر ضرور آپ کی دس بوسی کے لیے حاضر ہوں گا۔ امی جان، آپ میری طرف دیکھیے، ذرا مسکرائیے، مسکرائیے۔
اچھی طرح سے خیال رکھنا، اس مشن میں تم اکیلے نہیں ہو، کچھ اور لوگ بھی تمہارے ساتھ آئیں گے۔ یہ ان لوگوں کی فائل ہے جو اس مشن میں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ملی بینک اور سیکیورٹی پرنٹنگ پریس ادارے کے نمائندے پرویز پیرانی کو اپنے کام میں مہارت حاصل ہے، سونے کی کیرات پر رکھنے کا بھی ماہر ہے، سادہ لو آدمی ہے لیکن اپنے کام میں انتہائی مہارت رکھتا ہے۔ بہروز ریا ہی وزارت خارجہ کا نمائندہ ہے، فرانسیسی اور انگریزی میں اچھی طرح سے بات کر سکتا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی یورپ میں گزاری ہے، خود شفتہ انسان ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بہرام کاؤسی شاہی دربار کا خصوصی ایلچی، پر اسرار اور ذہین ہے، اس کی دم شاہی دربار سے ملی ہوئی ہے اور جہاں بھی پیسے کی بو آتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اچھی طرح دھیان رکھنا اس کا۔ رہی غزال گورانی، یہ ایک ابابیل ہے، نہ اس کا کسی سے لینا ہے اور نہ ہی دینا، یہ تمہاری مترجم ہے۔ یہ خاتون سپاہی زیادہ تر اپنے آپ میں مگن ہے، ایک لیفٹیننٹ ہے، مظلوم سی لڑکی ہے، جو فوجیوں کو روسی زبان پڑھاتی ہے۔ 5 سال سے فوج میں ہے اور فی الحال تمہاری مترجم ہے۔ ان لوگوں پر نظر رکھنا کہ کہیں تمہاری ابابیل کو لے اڑے۔
لیفٹیننٹ گورانی، آپ کے خیال میں ماسکو خوبصورت ہے یا پیرس؟
میں نے پیرس کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ماسکو ایک خوبصورت شہر ہے۔
بتائیں حضرات، میرا دل چاہتا ہے کہ اس لمحے آنیسٹ رہوں اور اعتراف کروں میں کتنا خوش ہوں کہ میں نے اپنے والد کی تلقین میں نے نہیں سنی اور روسی زبان نہیں سیکھی۔ مجھے آپ کا ہم سفر ہونے پر فخر ہے۔ میں پوری رغبت کے ساتھ تیار ہوں آپ کے سامنے زانو تلم مستح کروں اور روسی زبان سیکھ لوں۔ کیا آپ مجھے یہ اعزاز دیں گی؟ آپ نے جواب نہیں دیا لیفٹیننٹ، کیا میں یہ اعزاز حاصل کر سکتا ہوں؟
ریاہی صاحب، میرا خیال ہے مادری زبان سے بھی آپ کا اچھی طرح سے کام چل سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھے ہم سفر رہیں۔
کرنل سانف، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔
مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔
یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماسکو کے لیے آپ کی فلائٹ کیسی رہی؟
ٹھیک تھی۔
Спасибо. Хорошо.
Скажи, что Москва нам понравится. Как принимающая страна, мы обеспечим их безопасность, подготовили хорошую развлекательную программу.
کرنل سنف اطمینان دلا رہے ہیں کہ ان کے پرامن ملک میں آپ کو لطف آئے گا اور آپ کسی چیز کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔
مجھے امید ہے۔ یہ پوچھ لو کہ کھیپ حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔
Он надеется. Скажите, золото готово, как мы договорились?
Да, все готово, как было ранее, говорю, нашим сторонам.
کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، سب کچھ سیٹ ہے۔
آخری دیرے
بلاخر شہد کے چھتے تک پہنچ گئے۔
بس ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ مکھیاں ہمیں ڈنک نہ مار دیں۔
اچھا ہے۔ حضرات، میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 14 سالوں کے بعد جس کام کا ہمیں انتظار تھا وہ ہوا انجام پانے والا ہے۔
معاف کیجئے، یہ بہت اچھا ہے۔ میری نظر میں اس کی قیرات بھی ٹھیک ہے۔
زبردست۔
ان سے کہو تمام اینٹیں قیرات چیک کرنے اور گننے کے بعد تحویل میں لے لی جائیں گی۔
Все слитки должны быть пришитыми, а золото должно быть вещи пробы.
Не надо ничего считать и проверять. Мы уже все проверили, сосчитали. Наша страна передает Ирану 11,5 тонн золота самой высокой пробы.
کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، گنتی پہلے کی جا چکی ہے۔ سوویت یونین سرکاری طور پر حکومت ایران کے ساتھ اپنے معاہدے پر عمل درآمد کرے گا۔
مہربانی ہوگی میری باتیں ان کو دوبارہ سے بتا دو۔
پولکوونک نستایوی زدیلیتے تک کا گون پوچھا۔
خرشو، کک گواریت اوناس доверяй, но проверяй, да? А после этого мы приглашаем вас на торжественный ужин, посвященный этому событию.
कहते हैं ऐसा लगता है कि आपको हम पर एतबार नहीं है। बहरहाल वो इत्तेफाकी राय रखते हैं, ये काम कर देंगे और इसके बाद उस मौके पर जश्न मनाएंगे।
ये मिशन तुम्हारे लिए ऊपर चढ़ने का जीना है कर्नल, या तुम इस फाइल के साथ अर्श तक पहुंच जाओगे उस जगह पर जो तमाम अमानतदारों की आरजू है, या इस तरह फर्श पर गिर जाओगे कि इसके बाद तुम कमर सीधी नहीं कर सकोगे।
कर्नल साहब, पीरानी साहब को देखिए जरा।
बहुत दिलचस्प है। लगता है आपको सख्त जुकाम हुआ है काउसी साहब।
यहाँ जिस सर्दी ने तो हिटलर को भी जान से मार दिया, हमारी क्या औकात है।
ये आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं।
Я хочу спросить, если вы не довезете золото домой в Иран, что с вами сделают, а?
Агар соне ки е кеп апке мулк так на пахонч пае, то ап пер кэси мусибат тут падеги?
Во худ кя сочте?
А как думаете вы?
Я думаю, что вас всех расстреляют. А тебя первого.
Кэ рэ ап сабко мар денге.
Шутка.
Унхоне мазах кия хэ.
Не будем говорить о смерти в этот день. Хороший день. Хорошая музыка.
हमें मौत की बात नहीं करनी चाहिए। कर्नल साहब इन बातों को संजीदा ना लें।
फौज में अभी तक बदले लिए जा रहे हैं, सिर्फ उसकी शक्ल तब्दील हो गई है। अपनी जान बचाकर भाग जाओ, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे।
आली जनाब, जरसारत होगी क्या? मुझे इजाजत है आपसे इल्तिजा करूं बंदे को इस मिशन पर जाने से माफ रखें?
शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक फौजी हो कर्नल। फौज का मतलब है निजाम की इताअत।
मेरा ध्यान है जनाब, इसके बावजूद मैं चाहता हूं आपकी खिदमत में इल्तिजा करूं कि अगर इम्कान हो तो किसी और शख्स को इस मिशन पर जाने के लिए मेरी जगह पर मुकर्रर कर दें।
ऐसा तो नहीं कि तुम डर गए हो?
नहीं, डरने की बात नहीं है सर। सच्ची बात तो यह है कि मैं एक अरसे से एक खानदानी मसले में उलझा हुआ हूँ। मैं अपनी माँ की बीमारी को आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ।
परेशान ना हो, उसकी रिपोर्ट मुझे मिल गई है। अगर जरूरत हुई तो मैं उनके इलाज के लिए यूरोप के बेहतरीन अस्पतालों में भेज दूंगा। तुम सिर्फ मिशन के बारे में सोचो कर्नल।
क्या सिर्फ मैं पूछ सकता हूँ कि मैं क्यों?
इसलिए कि तुम ज़हीन व फतीन हो, होशियार हो, वतन परस्त हो, किसी से और किसी जगह से भी वाबस्ता नहीं।
मान जाओ कि इस मामले में तुम सिर्फ शिकार का एक चारा हो और बस। याद रखना कि तुम शिकार ना हो जाओ कर्नल।
Не торопитесь, ваш вылет задерживается.
Советую взять вещи и подняться в свои номера.
कहते हैं रवानगी के लिए जल्दबाजी ना करें, फिलहाल आप लोग हमारे मेहमान हैं।
उनसे पूछ लो कि इसकी वजह क्या है।
Причину объясните.
Товарищи сказали, погода нелюдная. И, видимо, вам придется задержаться еще на неделю.
इसे पढ़ो।
मौसम परवाज के लिए मुनासिब नहीं है। कहते हैं कि आपको एक हफ्ता यहाँ रुकना पड़ेगा।
अरे वाह, लगता है अभी हमें यहाँ और भी रहना है।
क्या मतलब है कि अभी तो हमें यहाँ रहना है? तेहरान में लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। कर्नल साहब, आप न माने, मैं कवानीन से वाकिफ हूँ। ऐसा लगता है कि उनके काम में कुछ गड़बड़ है। कुछ लम्हे के लिए आप मुझे इजाजत देंगे? मोहतरमा, उनसे कह दीजिए कि वक्त नहीं हमारे पास। आपकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो आज ही हमें सोने के ईंटों के साथ रवाना कर दे।
इतनी जल्दबाजी ना करें रिहाई साहब। क्या आपने नहीं सुना उसने क्या कहा? ये रूसी ऑफिसर कहता है मौसम खराब है और हम फिलहाल परवाज नहीं कर सकते। जरा बाहर की तरफ एक नजर दौड़ाइए, बर्फबारी हो रही है।
कौशी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इस बर्फबारी में तो हम परवाज नहीं कर सकते। कहीं आप हमें टिकाने लगाने की तो नहीं सोच रहे?
मुझे आपका मसला पता है।
आप हजरात बस कीजिए, इससे कहिए कि कल सुबह हर हालत में परवाज कर जाएंगे हम।
जी हुजूर।
कुछ लम्हे ठहरिए कर्नल साहब, मैं शाह के खुसूसी नुमाइंदे की हैसियत से आपके इस काम से मुत्तफिक नहीं हूँ। इस तरीके से हमारी जानों की बात तो छोड़े, सामान की सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जाएगी।
कर्नल साहब।
क्या बात है?
आपके लिए खबर है मेरे पास।
क्या, कैसी खबर?
कौसी साहब कहते हैं कि हमें एक रूसी हवाई जहाज से तेहरान जाना है। वो कहते हैं हम अपने हवाई जहाज से नहीं जाएंगे। इस बात का क्या मतलब है? मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा।
ओके। हेलो जी, मैं खुद हूँ। आप?
Еще раз благодарю вас за то, что сегодня состоялась такая встреча.
Пожалуйста, минутку.
Пожалуйста.
Саламу алейкум, Сафир сахаб.
Валейкум ассалам, бахут хуш амади.
Муже апсе милкар бахут хуши хуи.
Ташриф лайе.
Бахут шукрия. Агар ап иджазат дейн, то мэй митинг шуру хоне се пехле апка куч вакт лена чаата хун.
Чик хе, кои бат не.
Измене итна, господа.
Джи кайе.
सच ये है कि जनाब, मैं इस बात से परेशान हूँ कि इस मीटिंग में मेरी शिरकत के बारे में हुकूमत के मुतला ना होने पर मबनी जनाब अली के अहकामात अफसरान बाला के अहकामात से मेरी रोगर्दानी के मुतरादिफ करार पाएगा।
कर्नल साहब, मैं आपकी परेशानी को अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन आप ये ना भूलें, चाहे हम हुकूमत में चाहे आप फौज में, हम सब आला हजरत के सिपाही हैं। इस बात को तो मानते हैं ना आप?
जी, लेकिन
मैं जानता हूँ कि तुम इस बात से परेशान हो कि ये अफराद कौन है। वो जो सादा लिबास में है, मिस्टर दिमित्री मिखाइलकोफ, रूसी हुकूमत का इंतहाई बाइख्तियार नुमाइंदा है, और वर्दी में मौजूद जनरल व्लादिमीर निकूफ एशियाई सेक्टर का ऑपरेशनल कमांडर है, और साथ ही साथ केजीबी का नुमाइंदा भी। चलो।
हेलो लेफ्टिनेंट, अच्छी तरह से सुनो, मैं चाहता हूँ बहुत जल्द उस रूसी ऑफिसर के साथ मेरी मीटिंग कराओ। हाँ वही, सिर्फ उसको ताकीद करो कि वो अकेला हो। मौसम ठंडा है। अच्छा इसरानो साहब, मुझे पसंद है तुम्हारी फारसी का लहजा सुन लो। मेहरबानी मेरे साथ मजाक मत करो। उस दिन उस पार्टी में तुम काउसी साहब से बात कर रहे थे और मैं इस बात को जानता हूं कि काउसी को एक लफ्ज भी रूसी नहीं आती है। तुमसे क्या कह रहा था? मैंने पूछा कि काउसी तुमसे क्या कह रहा था। बहुत खूब, अगर कहने के लिए कोई बात नहीं है तो मैं उधर जाता हूं।
बैठो कमांडर। सही है, उसने मुझे अपने साथ ताउन की बात की थी।
तुमने भी उसकी बात मान ली?
हाँ।
मैं अंदाजा लगा रहा था। जहां तक मैं जानता हूं, आपके मुल्क सोवियत यूनियन में अगर कोई जासूसी करे तो उसको और उसके घर वालों को फांसी पर चढ़ा देते हैं।
सोवियत यूनियन के आवाम बोल शिवा का और मान शिवा का जंग की वजह से बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं। मेरी दो बहनें भूख से मर गई हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं भी उनकी तरह मर जाऊं।
तुम्हारी बहनों के बारे में मुझे बहुत अफसोस है। देखो इसरानोव साहब, हम दोनों फौजी हैं और एक दूसरे की बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। काउसी ने तुम्हें कितने का ऑफर किया है?
1 साल की तनख्वाह के बराबर, सिर्फ कुछ दिन तक तुम्हारी निगरानी करने के एवज में।
मेरे पास तुम्हारे लिए इससे अच्छा ऑफर है।
मैं सुन रहा हूं।
11.5 टन सोना कैसे ईरान पहुंचाओगे तुम?
कल रात बगैर शोर शराबे के ये खेप मास्को की बंदरगाह से एक बड़े रूसी कार्गो जहाज में हमारे शुमाली बंदरगाहों में से किसी एक की तरफ ले जाई जाएगी और वहां से तेहरान।
क्यों इस तवील रास्ते से?
काउसी साहब, इस तरह किसी की समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं।
ये नामुमकिन काम है। सोवियत इंटेलिजेंस सिस्टम हत्या के इनमें से एक ईंट भी जहाज में जाने नहीं देगी। और हाँ, क्या तेहरान से हमाहंगी के बगैर रूट को तब्दील किया जा सकता है?
काउसी साहब, जनरल जाहिदी टेलीफोन के जरिए तमाम मामला से आगाह हो चुके हैं।
टेलीफोन के जरिए? आपसे ये तवक्को नहीं थी कर्नल साहब। इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी कॉल टेप नहीं की गई हो? यहाँ सब कुछ ज़ेर निगरानी है। यकीनन अब तक KGB का नाम आपके कानों से टकराया होगा। लीजिए, ये एक माइक्रोफोन है, आज ही ये मुझे मिला है, देख लीजिए।
अजीब है, इस जैसा एक मेरे कमरे में भी पड़ा हुआ था। ये मुझे पहले ही दिन मिला था। आपको भी KGB और सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं खुद उन मामलात को हल कर लूंगा। शब बखैर।
नाराज ना हो काउसी साहब, सच्ची बात है कि इसके बावजूद कि मैं कर्नल साहब के इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन उसने अच्छा काम किया।
तुम्हारा क्या मतलब है?
बिलाखिर एक आलमी जंग के तावान का मामला है। इस बात का इम्कान है कि कर्नल साहब डर गए हों कि रूसी तावान का वही असर हो जो अंग्रेजों के तावान का शीराज के असलहे के गोदाम में हुआ था। बूम।
ये बातें छोड़ो, अगर तुम्हारा इन सोने की ईंटों में कोई हिस्सा होता तो तुम इसका क्या करते?
मेरा? मैंने अब तक इसके बारे में सोचा भी नहीं।
सच? लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। मैं यकीन रखता हूं वो सब लोग जो इस जहाज में हैं इस सौदे के बारे में सोच रहे हैं।
اٹھائے گیری کیسی؟ اس کے بارے میں تم نے نہیں سوچا؟
آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں حکومت کا باقاعدہ نمائندہ اور سینئر سفارتکار ہوں قوسی صاحب.
ہم سب حکومت کے نمائندے ہیں. میں نے تمہارے ہاتھ کی لکیریں پڑھ لی ہیں ریاحی صاحب. تمہارا منصوبہ کیا ہے؟
میں ایک سادہ اور آنےسٹ شخص ہوں قوسی صاحب.
آنےسٹ؟
میرے ہاتھ کی لکیروں کو پڑھنا زیادہ مشکل نہیں. پڑھ سکتے ہیں تو کرنل صاحب کے ہاتھ کی لکیروں کو پڑھیں شرلوک ہومز صاحب.
بھائی اس کی وجہ مجھے بتا دو. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ماسکو کا دورہ تھا جس میں ایک دن بھی اچھا نہیں گزرا, اور یہ یہاں کا حال ہے. کوئی نہیں ہے جو کہہ دے کہ تہران میں ہماری بیوی بچے بغیر اطلاع کے پڑے ہوئے. محترم آپ سے مخاطب.
پریشان نہ ہوں پیرانی صاحب, اپنے آپ پر قابو کیجیے. آخر ہوا کیا ہے؟
مذاق بنا رکھے اس شخص نے. ذلیل خفتی حقیر آدمی. اس نے جہاز کے کیپٹن کو کہا ہے کہ کسی کو ٹیلی گرام دینے کا حق نہیں ہے.
آپ کو کرنل صاحب کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے.
کیا ہوا؟ بری لگ گئی میری بات؟ تم کیوں مدعی سست گواہ چست بن رہی ہو؟
کیا مطلب ہے پیرانی صاحب؟ میں آپ سے کہتی ہوں اپنا احترام محفوظ رکھیں. میں اس وقت صرف اپنی ڈیوٹی پر ہوں اور بس.
نہیں بھائی, آپ سچ کہہ رہی ہیں. ڈیوٹی نہ کہیے محترمہ, کہہ دیجئے ہنی مون.
دکھاؤ ذرا. یہ بات تم خود کرنل صاحب کے سامنے بھی کہہ سکتے ہو؟
کیوں نہیں کہہ سکتا ہوں. تم سمجھتی ہو میں اس سے ڈرتا ہوں؟ دیکھو وہ خود تو کچھ نہیں ہے. اس کے تمام باپ دادا بھی آ جائیں نا تو میں مرد ہوں. مرد کی بات ایک ہوتی ہے. سلام عرض کرتا ہوں کرنل صاحب. میں بار بار میں کہہ رہا تھا کہ کرنل صاحب خدا کا بندہ.
چاؤ.
جی جی چلو جی جاؤ. چلتا ہوں جی چلتا ہوں.
ایک گرما گرم چائے آپ کی طبیعت بحال کر دے گی.
بہت شکریہ.
کرنل صاحب کیا آپ آرام کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتے؟
نہیں, جب تک میں ایران نہیں پہنچاتا اور یہ سامان حوالے نہیں کروں گا میں نہیں کر سکتا.
یعنی اب بھی آپ پریشان ہیں؟ بالآخر آپ کس لیے؟ آپ نے تو جو کام چاہا وہ کر لیا. سارا کام آپ کی پلاننگ کے مطابق انجام پا گیا.
میرا منصوبہ اور پلان اہم نہیں ہے لیفٹیننٹ, اہم یہ ہے کہ باقی لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں.
اجازت ہے میں ایک بات پوچھوں آپ سے؟
پوچھو.
آپ نے شادی کر لی ہے؟
میں ایک سپاہی ہوں محترمہ, ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کوئی اور سوال نہیں ہے؟
نہیں.
آپ جا سکتی ہیں.
سر آنکھوں پر.
لگتا ہے تمہیں بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی.
تیخو تیخو.
مجھے ایک ٹیلیگرام بھیجنا ہے, ارجنٹ. اپنے کیپٹن سے کہو کہ جہاز کو اس مقام پر لے جائے.
Кожевников крепче вези, крепче его. Ни ваза не разобьется.
तुम अपनी औकात भूल गए हो कर्नल, मैं शाही दरबार का एलची हूं, तुमने भीड़ के छत्ते में हाथ डाल दिया है।
Attention!
चले जाओ,
चलो।
ये उनका आखिरी काम था, उनकी ड्यूटी खत्म हो गई।
फौजियों सब लोग नीचे उतरो, जल्दी से जाओ, जल्दी आओ, गाड़ी तैयार करो।
क्या बात है, आप क्या कर रहे हैं लेफ्टिनेंट? हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
सर, सोने की पेटियों को गाड़ी में लाद रहे हैं। बराह रास्त हुक्म आया है कि फौरन तेहरान भेजा जाए ये माल।
ये ऑर्डर किसकी तरफ से है?
जनरल जाहिदी की तरफ से ये बराह रास्त हुक्म है।
उतर जाओ जल्दी से।
हथकड़ी खोलो।
फौरन गाड़ी बैठो।
सलामत रहें कैप्टन साहब।
वालेकुम सलाम। काम तमाम हो गया है?
जी साहब, ये आखिरी पेटी है आपकी खिदमत में।
अच्छा ठीक है, चलो नीचे आओ, गाड़ी चलने वाली है, जल्दी आओ जल्दी आओ।
कर्नल साहब, तमाम पेटियां सही और सालिम हवाले कर दी गई है जनाब, अब हम सुकून का एक सांस ले सकते हैं।
बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं।
जी अच्छा।
कर्नल साहब, सब कुछ मेरे ख्याल में मशकूक लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ।
तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है लेफ्टिनेंट।
वो कैसे?
बहुत सी चीजों का तुम्हें पता नहीं है और ये तुम्हारे फायदे में।
अगर हमारी किस्मत अच्छी होती तो सियासतदानों के साथ खेल में शरीक ना होते। तुम्हारे लिए यही अच्छा था कि इसी का उसी के साथ खेलते, ताकि तुम्हारी जेब के आखिरी पैसे को भी जाड़ कर ले जाता जलील गद्दार आदमी।
कर्नल साहब, मेरे ख्याल में वो पैगाम जो उस नौजवान अफसर ने आपको दिखाया वो आपकी तरक्की का वादा था, है ना?
नहीं जनाब, जब तक तेहरान नहीं पहुँचते कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
छोड़िए कर्नल साहब, अब खतरा टल गया है। मुझे यकीन है कि तेहरान पहुंचते ही और खेप को हवाला करने के बाद आपका ग्रेड और रैंक और अलबत्ता मोहतरमा गुरानी साहिबा आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। आप दोनों के लिए अच्छे मुस्तकबिल की पेशगोई करता हूं।
सिपाही का मुस्तकबिल गोली और बंदूक है, इसके अलावा बाकी बातें बेकार है। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी हद में रहें शहजादे। अपने असलहे उठा लो।
कोई मसला पेश आया है सर?
एक ट्रेन हमारा ताकुब कर रही है।
आपको हर चीज पर शक क्यों है कर्नल? इस बात की कोई जरूरत नहीं है, हम अब अपने मुल्क में हैं।
खामोश, तुम इस काम में मुदाखलत मत करो।
मुझे पता नहीं था कि अपनी टीम के अफराद से बात करने के लिए आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। छावनी नहीं है कर्नल, क्या मुझे टॉयलेट जाने के लिए भी आपसे इजाजत?
मैंने कहा तुम अपना मुंह बंद रखो, खामोश रहो, अपनी जगह पर बैठे रहो, मैं बाद में बात करूं।
जबान संभाल कर बात करो, अपना एहतराम महफूज रखो, मैं तुम्हारा कारिंदा नहीं हूं।
लाएं जनाब, मैं इल्तिजा करता हूं, इस अच्छे माहौल को खराब ना करें, शायद आपको किसी महकमे का सरबरा बना दिया जाए।
बातों को सरबराही मैं क्या करूंगा, आप मुझे अपने हाल में रहने, अकेले रहने के लिए भी आपसे इजाजत लेनी होगी।
वापस जाओ अपनी सीट पर, मैंने कहा वापस जाओ अपनी सीट पर।
क्या हुआ?
सब लोग नीचे ले जाओ।
ये क्या हो रहा है?
क्या हुआ? ये रुक क्यों गई?
बैठ जाओ से नहीं लेगा, ट्रेन से भी कोई नहीं उतरेगा। क्यों आई हो? मैंने नहीं कहा था कि कोई भी ट्रेन से नहीं उतरेगा।
लेकिन मैं दूसरों से फर्क रखती हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ।
कान खोलकर सुनो। देखो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, सुनो। गाड़ी की तरफ जाओ, वहाँ से तुम भाग सकती हो और अपने आप को निजात दे सकती हो। मैं ध्यान रख रहा हूँ, जाओ।
मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। आपको खुदा का वास्ता मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दे।
अपनी बंदूक मुझे दो।
नहीं,
अपनी बंदूक मुझे दे दो। मेहरबानी करके। बहुत अच्छा, जिस वक्त मैं तुमसे कहूंगा चली जाओगी, ठीक है? जाओ 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 जाओ, अपना ख्याल रखना। जाओ, मैं तुमसे कहता हूं, जाओ जाओ जाओ।
काम बिगाड़ दिया कर्नल, काम बिगाड़ दिया।
जनरल, वो आपकी आवाज नहीं सुन रहे, अगर आप उन्हें आराम करने दें वो बेहतर है।
बहुत अच्छा, फिलहाल किसी को खबर ना हो मामले की।
कैदी पर अमर सकीन को तफ्तीश के लिए तैयार करें।
गद्दार,
ले जाओ इसको। गद्दार, झूठे दगाबाज, ले जाओ इसको।
गद्दार, मुल्क की गद्दारी करके,
ले जाओ इसको।
चलो अंदर।
अजीब और गरीब जमाना है कर्नल, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अब तक जिंदा हो। पता है कर्नल, मैं खुद टॉर्चर का मुखालिफ हूँ, लेकिन खामोशी से भी मुझे नफरत है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सिगरेट? अब आते हैं असल बात की तरफ। मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ तफसील से सुनना चाहता हूँ। मैं सुन रहा हूँ।
अगर मेरे पास कहने को कुछ होता तो फौज के तफ्तीशकारों को बता देता, जो मेरे साथी है ना तुम्हें।
क्योंकि वो तुम्हारी वर्दी के साथी थे इसलिए उन्होंने तुम्हारा लिहाज किया, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूं, इसलिए तुम्हें मेरे हवाले किया गया है। मुझे तो तुम जानते हो।
जी मैं जानता हूं, मेजर खान बाबा काउसी, खुफिया इदारे का खसूसी ऑफिसर और सोने की मुंतकली के मिशन में जनरल जाहिदी का खुफिया नुमाइंदा।
तो जानते हो कि मैं कौन हूँ?
बहुत अच्छी तरह से, एक बेतुका शख्स जिसे अभी भी मुझे सैल्यूट करना चाहिए।
मैंने तुमसे ज्यादा बड़ों बड़ों को जबान खोलने पर मजबूर कर दिया, लिहाजा धमकाने के जरिए मेरे गुस्से को भड़काने की कोशिश मत करो। तुम लोगों ने क्या किया सोने का?
मेरे सामने ड्रामेबाजी मत करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं जल्दी कालकोठरी से निकल जाऊंगा और दुनिया को बता दूंगा, तुम सबका राज फाश कर दूंगा।
सत्यानाश हो तुम्हारा और तुम्हारे बाप का। तुम मुझे मुट्ठी भर खाना बदोश डराते हो मक्कार। ये तुम हो जो कूजो बाजार के लोगों के सामने काबिल नफरत होगा। जान लो, जब तक तुम जबान नहीं खोलोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ट्रेन पर हमला हमारा ही काम था। कहानी का बाकी हिस्सा भी सुनना चाहते हो तुम? हैं, तो फिर अच्छी तरह से सुन लो, अपने कानों खोल लो। जनरल जाहिदी का ही ऑर्डर था कि उस ट्रेन को किसी सूरत में तेहरान नहीं पहुंचना है। प्रोग्राम के मुताबिक सोने की खेप एक मदरुका स्टेशन पर पहुंचा दी गई। वाह वाह, शाबाश, बेहतरीन काम किया है।
देखा?
खुदा हाफिज अनिस साहब। शुरू करो।
चलो भाई ऊपर आओ, कुछ लोग नीचे खड़े रहो, जल्दी आओ, उठाओ, चलो ऊपर उठाओ, उठाओ।
एक और पेटी,
दूसरा वाला।
से भी।
खान बाबा मैं कहता हूं शायद पहले से ही कोई सोना था ही नहीं। अब मेरे लिए वाजे हो चुका है कि तुम सब गद्दार हो। चोरी मेरा काम नहीं है।
मुझे यकीन है कि तुम्हारा ही काम है, लेकिन यह लुकमा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। यह सब तुम्हारी कारस्तानी है। नामरी की तस्लीम करते हैं कि तुम उनके आदमी हो और नहीं अंग्रेज। क्या तुम अकेले काम करते हो? बेईमान, तुमने सोने की ईंटों का क्या किया?
अभी तुमने नहीं कहा था कि चोरी तेरा काम था? वो जग गया हो तुम।
चोर तुम्हारे बाप दादा है। बताओ सोना कहाँ है? तुम खुद चोर हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहाँ रखा है सोना? कहाँ छुपाया है? कहाँ छुपा के रखा है? क्या क्या सोने का कहाँ ले गए? कहाँ रखा है सोना? जब तक बोलोगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं।
अच्छा, क्या रिपोर्ट है? उसने बात की?
नहीं, कुछ नहीं, एक लफ्ज भी नहीं बोला उसने, मगर उसने कुछ नहीं बताया। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि काम उसी का है, मुझे शक नहीं है। आप मुझ पर एतमाद कीजिए, मुझे इत्मीनान है कि मैं उससे उगल
वालूंगा। इत्मीनान मत रखो मेजर, रिपोर्ट मिली है कि जो लोग ट्रेन में मारे गए थे वो मजहबी अनासिर थे और उन्हें जेल से भगाया गया था। अगर उसके पास कहने के लिए कुछ था तो अब तक कह चुका होता। तुम्हारा टाइम खत्म मेजर।
लेकिन सर मुझे बस एक मौका और दे
दीजिए। कोई गुंजाइश नहीं, एक रिपोर्ट तैयार करो और फाइल को दाखिले दफ्तर करो। इस पर गद्दारी का इल्जाम लग चुका, कबल इसके कि सूरत हाल खराब हो सजाए मौत दे दो।
लेकिन सर
उसको डेथ स्क्वाड के हवाले कर दो।
ठीक है सर।
अस्सलाम वालेकुम।
वाह, वालेकुम सलाम। हमारी खूबसूरत लेफ्टिनेंट, तशरीफ रखिए।
आपको मुझसे क्या काम है?
तुमने आज के अखबार की खबर पढ़ी?
नहीं।
लिखा है कि सोने की ईंटों को सेंट्रल बैंक में जमा करा दिया गया है।
तो फिर क्यों कर्नल अभी तक जेल में है?
क्योंकि ये खबर जाली है और सोने का अभी तक कोई अता पता नहीं है।
लेकिन आपने तो कहा कि सोना मिल गया है।
मैंने नहीं कहा, अखबारात ने लिखा है। तहम फितरी सी बात है कि हुकूमत अपनी बेइज्जती होने से परेशान है, इसीलिए ऐलान किया गया है कि सोने की ईंटें बैंक के हवाले कर दी गई है। लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं किया गया है।
नहीं किया गया है?
नहीं, नहीं किया गया है।
अगर ऐसी बात है तो सोना किसके पास
है? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक आदमी के पास है।
कौन?
कर्नल फरामर्ज तकीन।
मुझे यकीन नहीं आता।
और कल उसको फांसी दी जा रही है और मैं उसकी फांसी के ऑर्डर को रोक नहीं सकता।
क्या इनके लिए कुछ किया जा सकता है?
सिर्फ एक रास्ता है।
बताइए।
यही कि किसी तरह कर्नल साहब को मौत से नजात दिला दी जाए। इस तरह कर्नल तुम्हारे हो जाएंगे और सोना हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्या ख्याल है तुम्हारा?
आप बहुत सियाने हैं कौसी साहब। कर्नल मेरी तरफ से आपके लिए खुसूसी तोहफा। मुझे सोने में से अपना हिस्सा चाहिए। जो भी हमें मिल जाएगा हम आपस में तकसीम कर लेंगे। क्या ख्याल है? मैं सुन रही हूँ।
शाबाश, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। कल सुबह कर्नल तकीन को फांसी घाट पर ले जाया जाएगा। प्रोग्राम के मुताबिक इससे पहले कि हम वहाँ पहुँच जाएं, तुम्हें वहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा। सही प्लानिंग तुम्हारे लिए लिख कर दूंगा। कैदी को ले जाने वाली गाड़ी में पहले से ही बम रखा हुआ होगा। कर्नल की रिहाई के लिए हालात आमादा होंगे। सिर्फ तुम्हें ध्यान रखना होगा और मुनासिब मौके की तलाश में रहना पड़ेगा और बस।
मेरे हुक्म के लिए तैयार है। पोजीशन, टारगेट, सामने वाला टारगेट। हुक्म की तामील के लिए तैयार।
मुझे ढूंढ रहे हो?
बेवकूफी मत करो।
बेवकूफी तुमने की है।
बेवकूफ बिल्ली हो तुम।
बिल्लियां उस वक्त से बेखासियत हो गई हैं जब से उन्होंने कुत्तों का अंजाम देख लिया था।
क्यों अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली?
बहरहाल तुमने भी एक बार यही काम मेरे लिए किया था।
भाई तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कहां ले जाएंगे, कब और कैसे ले जाएंगे? मैं इन बातों को नहीं समझता हूं। आखिर तुम कैसे एकदम उनके सामने खड़ी हो गई?
जैसे कि तुम्हें मुझ पर भी एतमाद नहीं है।
मुझे अब किसी पर भी एतमाद नहीं है। रोको,
खतरनाक है।
रुक जाओ।
बहुत अच्छा कर्नल साहब।
मुझे मत कहो कर्नल साहब। तुम समझती हो मैं गधा हूं? मगर क्या हम उस लानती मिशन में एक साथ नहीं थे? उन्होंने तुम्हें क्यों फांसी पे नहीं लटकाया? तुम क्यों आजाद हो? जवाब दो। आपके लिए लेफ्टिनेंट या कैप्टन का ओहदा कम है। आप कर्नल की रैंकिंग की शाइस्तगी रखती हैं कर्नल। इसके बाद मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं। चली जाओ।
लानत हो मुझ पर, लानत हो तुम पर। ये लो, ये लो,
अब ठीक है? हाँ, यही चाहते थे ना तुम? अब मैं तुम्हारी तरह हो गई। ये मेरे रैंक और मेरी जिंदगी के, मुझे नहीं मालूम कौन सी मुसीबत उस पर टूटेगी। क्या मैं रैंक और अपनी तरक्की की खातिर ये सब कर रही हूँ? अब मैं कुछ भी, लेफ्टिनेंट और ना कर्नल, कुछ भी नहीं। अब खत्म हो गया है सब कुछ।
तुम्हें अपने आप को इस मसले में नहीं उलझाना चाहिए था। अपने आप को मेरी खातिर खतरे में नहीं डालना चाहिए था।
अब तुम सच सच मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हें तो हद आशिक का रोल भी अदा करना नहीं आता है कि चलो इंसान उसी में खुश हो ले। तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट ही नहीं, थोड़ी सी मोहब्बत तो दूर की बात है, हमेशा तुम्हारे चेहरे से फिटकार बरसती रहती है। तुम आखिर अपने आप को क्या समझते हो? तुम ये जानना चाहते हो कि मैं तुमसे कैसे मिली? तुम्हारे फरार का मंसूबा मैंने नहीं बनाया, ये काउसी का काम था। तुमने सही अंदाजा लगाया। कहानी उस मनहूस दिन से शुरू हुई थी जिस दिन उस कमबख्त ने उस जेल में कदम रखा जहां पर मैं कैद थी। वो मुझसे बात उगलवाना चाहता था। पूरे 10 दिन तक कैद तन्हाई में रही। काउसी के जेल में आने के साथ ही सब कुछ बदल कर रह गया। मैं रिहा हो गई। कुछ दिनों के बाद उसने मुझसे राब्ता किया और मुझे रात के खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में दावत दी। वहां पर ही उसने अपना मंसूबा मुझे बता दिया। ये पूरी हकीकत है। बहुत अच्छा, तो फिर क्यों रुक गए हो? मुझे अपना तल्ख चेहरा दिखा दो। तुम्हारी आदत को तो मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं इस इंतजार में हूँ कि मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, या जिस तरह के मुझे घूर कर देख रहे हो मुझसे कह दो कि तुम्हें इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी।
तुम्हें इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी।
यकीन यकीन करो, इस पूरी मुद्दत में मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी। मैं खुशी से फूली नहीं समाती थी कि जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें पालूं, लेकिन अब मैं चाहती हूं तुम्हारे सर में गोली मार दूं।
क्या इस पर एतमाद किया जा सकता है?
क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई चारा है? अहमद, अहमद,
माशाल्लाह जो आखिर तक वफादार रही।
शुक्रिया।
देखा, फौज में जब चटाई की जाती है तो फिर कोई भी नहीं बचता। कर्नल साहब, तुम सादे हो। देखा कि इस पूरे मामले में तुम सिर्फ कुर्बानी का बकरा थे। कहा था ना किसी पर एतमाद मत करो।
बस भी करो ना अहमद, तुम फिर शुरू हो गए। देखो मैं सच कह रहा हूँ, अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें खल रही है तो मैं चला जाता हूँ। उठो।
कहाँ ठहरो, तुम कहाँ जा सकते हो? फरामर्ज, यहीं पे रुक जाओ।
क्या कुछ हुआ है?
परेशान ना, अगर जरूरत पड़ी तो इनको इलाज के लिए यूरोप के बेहतरीन अस्पतालों में भेज दूंगा। तुम सिर्फ मिशन के बारे में सोचो कर्नल।
ये पास हैं, मुनासिब नहीं है कि आप मजीद यहां ठहरें। एक आदमी है जो आपको मुल्क से बाहर ले जा सकता है।
ठीक है, अब हम कब उससे मिल सकते हैं?
वक्त का तयन वो खुद करेगा, उसको यहां पर आना है, हम उसका इंतजार करेंगे। वही है।
मेरे ख्याल में इसकी चाल मशकूक है। वो क्यों नहीं कहता कि खुद आएगा? इस तरह तो बैठा है
इसलिए कि यहाँ खतरा
है। क्या मतलब है? अगर यहाँ महफूज नहीं है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं?
परेशान ना हो, मुझे अहमद पर एतमाद है।
लेकिन मुझे तो नहीं है। अगर किसी वक्त वो हमारी रिपोर्ट कर देगा तो?
तुम क्या कह रही हो? अगर तय था कि अहमद हमारी रिपोर्ट करे तो अब तक कर चुका होता। थोड़ा सब्र करो।
मैं किस लिए सब्र करूँ? आखिर क्यों? टाइम जाया मत करो, हमारा रुकना बेकार है यहाँ पर।
आराम से बैठी रहो, बैठो। मैं एक बहुत अहम बात तुमसे कहना चाहता हूँ।
कौन सी अहम बात? इस वक्त हमारी जिंदगी से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है।
मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि बैठ जाओ हसन।
क्या
सोना?
सोना?
हाँ सोना।
तुमने क्या किया है कर्नल?
खुदा ना मुझे इस तरह से मत देखो। मैंने सिर्फ ऐसा काम कर दिया जो बाकी लोग करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके, बस यही।
यानी अभी सोना तुम्हारे पास है?
हाँ।
मैं तो बिल्कुल चकरा कर रह गई हूँ।
खत्म हो गया। ये एड्रेस है, बस अब उठिए, तैयार हो जाइए, चलना होगा, जल्दी करें। यही रहो जब तक मैं न कहूं नीचे ना आए।
ओके।
ये क्यों हमें यहाँ ले आया है?
जरा इत्मीनान रखो, सब कुछ पता चल जाएगा।
मैं फिर भी कहती हूँ कि हमें इस शख्स पर एतबार नहीं करना चाहिए था।
अहमद, कहाँ हो तुम? अहमद,
तुम गलती कर रहे हो, यकीनन वो चला गया है। तुम्हें खुदा की कसम, आओ यहां से चले जाते
हैं। वापस आएगा।
सच ये है कि तुम एक सीधे साधे इंसान हो। क्या मालूम कि कुछ लोगों ने यहाँ का मुहासरा ना कर रखा हो। हमने कैसी गलती की कि उसके हमला यहाँ आ गए हैं? मैं अच्छी खासी परेशान हूँ। तुम्हें खुदा की कसम, आओ यहाँ से चले जाते हैं।
अब तो मैं भी ऐसा ऐसा शक करने लगा हूँ। मेरे ख्याल में तुम सच कह रही हो, ये एक जाल है। हाँ एक जाल है। ये लो।
ये क्या है?
ये सोनिया की बेटियों का पता है।
देखो गजाल, मैं इल्तजा करता हूँ, मेरे ख्याल में सोने की चमक ने उस आदमी की आंखों को भी चुंधिया दिया है। देखो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम यहाँ से चली जाओगी, बात समझ गई? मैं देखता हूँ कि क्या कर रहा है।
ठहरो, मैं इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहती, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं इतना रास्ता तय करके सिर्फ तुम्हारी खातिर आई हूँ। दरअसल मेरे लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि इस वक्त वो सोना कहाँ है। अच्छा तुम जाना चाहते हो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मुझे नहीं मालूम कि तुमने ये सब क्यों मुझे बता दिया है।
अब दुनिया में जिस पर मैं एतमाद कर सकता हूँ वो सिर्फ तुम हो गजाल। जाओ, मैं तुमसे एतमाद करता हूँ। तुम अभी तक क्या क्या कर रही हो? मैंने नहीं कहा था कि गाड़ी के पास इंतजार करो? हाँ,
मैं सिर्फ इस शर्त पर जाऊंगी जब तुम पूरी हकीकत मुझे बताओगे। मुझे हक पहुंचता है जान लूं कि एड्रेस और हकीकत क्या है, तो क्या मुझे हक नहीं पहुंचता?
ठीक है, तुम्हारी बात सही है, शायद अब मौका ना मिले कहने के लिए। इस प्लान की मंसूबा बंदी दोनों मुल्कों के आला हुकाम के दरमियान तय पाई थी और मैं उसको अमली जामा पहनाने का जिम्मेदार था।
दोनों ममालिक ने फैसला किया है कि उनके घर के बागीचे से गैर जरूरी जड़ी बूटियां तलफ कर दी जाएं।
ईरान और सोवियत यूनियन के हुकाम तकरीबकारी से परेशान थे, चुनाचे स्टालिन की मौत के बाद इम्कान पाया जाता था कि सोने की ईंटों को ईरान मुंतकिल करने की राह में रोड़े अटकाए जाएंगे और अगर ऐसा हो जाता तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे खासे खराब हो जाते। यानी सफीर साहब कहना चाहते हैं कि गिव बैक का काम अंजाम पजीर नहीं होगा, आपका ये मकसद है?
गिव बैक शहनशाह ईरान की राय के मुताबिक अंजाम पजीर होगा, लेकिन मुंतकिले के तमाम अमल की प्लानिंग या जिसे आप फौजी कहते हैं ये तमाम ऑपरेशन वो आपके जिम्मे होगा।
तमाम फैसले सिफारत खाने में किए गए। मुआफ़िकत की रूह से खेप को समंदर के रास्ते से ले जाया जाना था, बड़ा रिस्क था और मैं आहिस्ता आहिस्ता सब बातों पर शक करने लगा था। मेरे लिए यह सवाल पेश आ रहा था कि इस पेचीदा ऑपरेशन का खर्चा कौन उठाएगा?
हुकूमत ईरान।
अब मुझे यकीन हो गया कि बहुत से लोगों की नजरें इस सोने पर लगी हुई हैं, लेकिन मैंने खेल को जारी रखा। इस्तानूफ ने काउसी के साथ साजबाज कर ली थी, लेकिन मैंने ज्यादा कीमत अदा करके उसको खरीद लिया।
सुन रहा हूं।
उस रात को इस मकसद के लिए कि इस्तानोफ को ज्यादा एतमाद में ले लूं, मैंने सिफारत और के जीबी के मौजूदात उसको बता दिए, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। मैंने उससे कहा कि वो पूरी राजदारी के साथ एक जाली खेप को जो कोयले से भरी हुई पेटियां थी सोने की ईंटों के साथ जहाज में लाद दे, URSS के मोनोग्राम का ठप्पा लगाकर। सरबा मोहर करना उसकी जिम्मेदारी और सल्तनत ईरान की अलामत के साथ सीर करने की जिम्मेदारी मेरी थी। आधी रात के लगभग जब हम ईरान की समुद्री हदूद में दाखिल हुए, पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इस्तानूफ ने असली सोने की खेप को समंदर में फेंक दिया। इस तरह जाली सामान की खेप जो कोयले पर मुश्तमिल थी जहाज में रह गई और फिर ईरान की सरजमीन पर ले जाई गई।
तो फिर इस्तानूफ को भी सोने की असली जगह का इल्म है।
मैंने उसके बारे में भी सोच लिया था, मुझे मालूम था कि इस्तानूफ ने भी अपने तई कोई तरकीब सोच रखी थी। उसी रात मैंने एक छोटी सी गड़बड़ी करके खुद को कैप्टन के केबिन में पहुंचाया। मैंने मौका मुनासिब जानकर सोने की ईंटों की जगह की खसूसियात नोट कर ली और इंदिराज करने की अलामतों को तब्दील कर दिया। हाँ गजाल, मैंने ये दौलत जान जोखिम में डालकर मुल्क के लिए महफूज कर ली थी, लेकिन इसका नतीजा क्या मिला? वो चाहते थे मुझे फांसी पर लटका दें। वो लिफाफा जो तुम्हारे हाथों में है समंदर में सोने की ईंटों का सही एड्रेस है। तुम सोने की इन ईंटों को आवाम के हाथों में पहुंचा देना।
तुम्हें यकीन है कि किसी और को इस बारे में कुछ इल्म नहीं है?
किसी को भी नहीं पता।
जबरदस्त, बहुत अच्छा है, बहुत ही माहिराना तरकीबें थी कर्नल। कर्नल साहब, आप जानते हैं मर्द बगैर किसी इस्तेस्ना के एक मामले में कमजोरी के हामिल होते हैं, वह इस सिन्फ़े मुखालिफ।
लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया है।
ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। खुदा हाफिज कर्नल साहब।
एक फौजी को पता होना चाहिए कि उसका असलहा बगैर कारतूस के कितना ज्यादा हल्का होता है ना लेफ्टिनेंट गुरानी?
कहां? मैं ज्यादा तहमल वाला आदमी नहीं हूं, किसी भी वक्त फायर खोल सकता हूं।
क्यों गसाल, क्यों? तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था अहमद, करीब था कि मैं इस मामले में गलती कर बैठूं। तुम किसके लिए काम कर रही हो?
मुझे माफ कर दो थकीन, मैंने अपने तई बहुत कोशिश की कि इस खेल में शामिल ना हूं, लेकिन बेसूद था, मेरा उनके सामने कोई इख्तियार नहीं था। मेरी उलझन कई साल पहले शुरू हुई, बिल्कुल उस वक्त जब अशरफ पहलवी स्टॉलिन से मिलने के लिए मॉस्को आई थी। उसके दौरे का जाहिरी मकसद मॉस्को में रेड क्रॉस के इलाज मालजे के मराकज और अस्पतालों का मुआयना था। वो स्टॉलिन से मुलाकात में सोवियत सरबरा कोई बात मनवाने में कामयाब हुई कि जब तक ईरान का शाही दरबार ना चाहे किसी किस्म का तावान ईरान को अदा ना किया जाए, क्योंकि सोवियत यूनियन के दौरे से उसका असल मकसद सोना हासिल करना था। स्टालिन ने भी केजीबी के एक तजुर्बाकार और बासर ऑफिसर के मुकम्मल इख्तियार के साथ उससे मुतारफ करवाया, और वो आला पाए का ऑफिसर कोई नहीं था सिवाय उसी स्टोनोव के। बहरहाल वजीर आजम मुसद्दक की मासूली और स्टालिन की मौत के बाद अशरफ पहलवी और स्टोनोव का वादा उस वक्त भी अपनी जगह पर कायम था। उस वक्त मैं मॉस्को यूनिवर्सिटी में एमए फारसी की तालबा थी और फारसी में अपनी मादरी जबान की तरह बात करती थी। स्टोनोफ ने दिलकश तनख्वाह के साथ मुझे केजीबी में मुलाजमत। बाद में मैं अशरफ के असर रसूख के बिना पर ईरान की शाही फौज में भर्ती हो गई और उस दिन के इंतजार में बैठी रही ताकि मुतरजम की हैसियत से रिक्लेम्शन टीम में दाखिल हो जाऊँ। दर हकीकत मैं और अशरफ और स्टोनोफ एक मुसलस की तीन अजला बन गए थे।
बेचारे अवाम, तुम सब धोखा खा गए। इब्तिदा से ही रूसी जहाज में कोई सोना था ही नहीं। असली सोना किसी और जगह पर था। जिस वक्त आप लोग भूखे भेड़ियों की मानन एक दूसरे को छीड़ फार रहे थे, सोने की ईंटें एक ट्रेन के जरिए जुल्फा की सरहद से ईरान में लाई गई। अखबारात ने धूम मचा दी कि सोवियत यूनियन से तावान हासिल कर लिया गया है, सोना ईरान पहुंच गया है। कौन सा तावान? वो सोना बिल्कुल जंग का तावान नहीं है। शाही ईरान ने सोने की ईंटों को एक और ट्रेन के जरिए तुर्की की सरहद से सीधा स्विट्जरलैंड के बैंकों में भिजवा दिया। न थिकीन इस खेल का फातिह था, न तुम लोग और न ही अवाम। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं।
तो इसका मतलब है कि हम सब इस बीच में हारने वाले लोग थे। दुख की बात है। आह कर्नल साहब, तुम भी भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सके।
मैं शायद भेड़ियों को तो नहीं मार सका, लेकिन मैंने बहुत सी लोमड़ियों का जरूर शिकार किया। कम अज कम यह कि मैंने तुम्हारी तरह अपने वतन से गद्दारी नहीं की। पता है गजाल, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी मां के सिवा कभी भी किसी खातून से छोड़ जाने दो, कोई बात नहीं। तुम्हें दो किस्म के काम सौंपे गए थे, पहला यह कि तुम सोने को तलाश करो और दूसरा यह कि मुझे कत्ल कर दो। अब जबकि सोना नहीं है, है ना, तुम अपनी ड्यूटी के दूसरे हिस्से पर अमल कर सकती हो। सब मर गए, अब मुझे शक नहीं है कि हम सब कुर्बानी का बकरा बन गए हैं, एक घिनौने खेल की भेंट चढ़ गए हैं अपनी कौम की दौलत से मुतालिक।
तहकीकात के मुताबिक शाही दरबार की जानिब से दरियाफ्त की जाने वाली खेप कभी भी कौमी खजाने में वापस नहीं आई। ईरान और सोवियत यूनियन के दरमियान ताल्लुकात में कई अशरों की कशीदगी के बाद 1955 के मौसम गर्मा में मोहम्मद रजा पहलवी जाती तौर पर मॉस्को के दौरे पर गया। उसके बाद ईरानी हुकूमत की तरफ से जंग के हकीकी तावान की अदायगी का मामला ताक नसिया में रख दिया गया और आज तक अमरीका, बरतानिया और रूस ने ईरानी अवाम को किसी किस्म का तावान अदा नहीं किया।